शांति एमएससी इन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी कोर्स का बुक 3 यूनिट 4 टॉपिक है सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अपनी यात्रा पर निकले, समुद्री यात्रा पर, अपनी जर्नी का भी उनको किस टेरिटरी में लैंड करना है, क्या टर्बुलेंस आ सकते हैं, क्या सी क्रिएचर्स हो सकते हैं, क्या सी के अंदर अंडरकरंट्स हो सकते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था उसको। और बहुत लंबी यात्रा पे निकला था तो उसके पास एक कंपास थी जो उसको डायरेक्शन दिशा प्रदान कर रही थी। बाबा तो रोज मुरली में कहते हैं तुम एक यात्रा भरो, हमें भी इस यात्रा पर कहां पहुंचना है, सेफ पैसेज कहां पर है, वो स्थान कहां पर है, टर्बुलेंस इस यात्रा में कितने आ रहे, कितने अंडरकरंट्स हैं और कितने क्रिएचर्स हमारे पीछे लगे हुए हैं जो हमें टाइम टू टाइम पिक करके देखते हैं इनको दर्द होता है या नहीं होता। होंगे हर किसी के साथ यात्रा में, ऐसा नहीं है किसी के पास कोई टेस्ट नहीं आ रहे हों, लेकिन हमारे पास तो वो कंपास भी नहीं है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है कैसे मैनेज करें। और फिर बनना तो लीडर है, सेल्फ है क्या, एम्स क्या थे इस सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप जो कोर्स डेवलप किया गया, खुद के ऊपर कंट्रोल कर सके, सेल्फ को कंट्रोल कर सके। सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप है ना, खुद में क्या कंट्रोल करना है, खुद के अंदर क्या है, माइंड इंटेलेक्ट संस्कार, उसमें अपने ही थॉट्स को, अपने ही इमोशंस को, अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिहेवियर को। दूसरा, टू बी एन इफेक्टिव लीडर, कैसे, बाय नोइंग द सेल्फ और अप्लाई करके, कुछ वैल्यूज को धारण करके, स्पिरिचुअलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में धारण करके। तीसरा है, खुद की हम लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है अपनी इस यात्रा में, हम अकेले ही चल रहे हैं, लेकिन बीच में जो कोई आ रहे हैं, नो ब्लेमिंग अदर्स, जो हम और अपनी उस स्टेट ऑफ माइंड के हम खुद ही जिम्मेवार हैं, ये एम क्लियर हो जाए अंदर से। टू हैव बेटर कम्युनिकेशन, टू फॉर्म बेटर रिलेशंस विद अदर्स। और जो मेजर लाइफ चेंजेस आ रही हैं, उन सबको हम मैनेज कर सके। ये कोर्स कैसे शुरू हुआ, वेस्टर्न मैनेजमेंट साइंस और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के दोनों का एक जहां पे सिंथेसिस, जो कॉमन सेट की थ्योरी में करते हैं ना कि कॉमन, दैट कॉमन पार्ट इज SML, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप। अगर आप में से किसी को मालूम हो, उस टाइम पे अराउंड 90s जब ज्ञान सरोवर बना था ही, फॉरेन के तीन भाई आए थे, उन्होंने ये कोर्स करवाया था, 21 डेज की ट्रेनिंग थी। लकली हम भी वो ट्रेनिंग उनके पास वो अटेंड कर पाए थे, और मधुबन निवासियों ने भी, उस टाइम वो शुरुआत थी वन बाबा के घर में भी। यस, सो ये उस दौरान माना, ये उन दोनों का एक हमें सिंथेसिस है, इस उसके दौरान मिलता है। और उससे बहुत से कोर्सेज और जो डेवलप हुए, SML, SMQ, माना सेल्फ मैनेज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब क्या चीजें हमने इसमें मैनेज करनी है? फिजिकल पार्ट जो कि डूइंग से रिलेटेड है, जिसमें हमारा डाइट, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप, फिजिकल एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए। मेंटल जो कि थिंकिंग से रिलेटेड है, माइंड पावर इसके अंडर, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, हमारी इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। थर्ड फीलिंग पार्ट रिलेटेड विद आवर सोशल एस्पेक्ट, हम लिंक्ड हैं सबके साथ। वैक्यूम में हम कोई ग्रो नहीं कर सकते, इमोशनली लिंक्ड, उस दिन भी यूनिवर्सल। किसी को कुछ दर्द हो रहा है तो हमारे अंदर भी उस दर्द की पीड़ा पहुंचती है। कैसे सोशल उसमें रहते हुए हम टीम वर्क कर रहे, ये सब इसके अंडर आता। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट जो कि बीइंग से रिलेटेड है, डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड बीइंग, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, जिसके अंडर आ जाता है वैल्यूज, बिलीव्स, साइलेंस, मेडिटेशन, सेल्फ एस्टीम, इननेट पावर्स हमारी। दिस इज ऑल लिंक्ड विद आवर बीइंग पार्ट। चारों को मैनेज करना, हर पल चेंज हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो ये थ्री थिंग्स आती हैं, नॉलेज, डिजायर एंड स्किल। नॉलेज में पता होना जरूरी है, इस चीज का ज्ञान इंडिविजुअल लेवल पे भी, व्हाट टू चेंज एंड व्हाई टू चेंज, जरूरत क्या है बदलाव की हमारे अंदर। अगर आज हम इस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये चीज सबने अंदर से जान लिया कि मेरे को खुद को बदलना है, औरों को हम बदल नहीं सकते हैं। अब व्हाट टू चेंज, व्हाई टू चेंज क्लियर हो गया, दूसरी चीज होनी चाहिए अंदर, विल टू चेंज, डिजायर टू चेंज। हमें ही बदलना है, क्यों बदलना है, और हम ही बदल करके दिखाएंगे अपने आप को। फिर स्किल भी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, हाउ टू चेंज, ये परिवर्तन आएगा कैसे हमारे में। इच्छा शक्ति भी हो अंदर से खुद को बदलने की, और वो जैसे कहते हैं अगर हम अपने ही लेवल पे ले, क्लियर हो गया विजन, चेंज करना ओल्ड लाइफस्टाइल, अब किसी को भी अंदर से भाता नहीं होगा, इसलिए उनकी लाइफ फिर बैक गियर नहीं होता, सामने का विजन क्लियर दिखाई होता। लेकिन ये कैसे करना है, अंदर में इच्छा भी आ गई, योग की विधि और सिद्धि। हम तो थ्रू मेडिटेशन अपने आप को चेंज कर रहे हैं ना। कई बार हम चिट चैट करते कहते होते हैं कि लोग समझते हैं ये रेड बल्ब की तरफ देख रहे हैं, बट इंटरनली क्या प्रोसेस चल रहा है। एक विधि है ना, योग की एक विधि है ना, और उस विधि से ही तो सिद्धि है। हाउ, अब परिवर्तन सब में एक जैसे, सब क्लासेस कर रहे हैं, वही मुरली क्लास सब कर रहे हैं, वही पढ़ाई हो रही, वही सब कुछ है। कहीं पर भी कहीं जाएं, सबके सब बैठे होते, लेकिन सब में चेंज का लेवल एक जैसा होता। लोएस्ट लेवल ऑफ चेंज इज एट द फिजिकल लेवल, बिहेवियर लेवल पे, जो कि बहुत मोमेंट्री अगर कहा जाए। घर में कुछ ऊपर नीचे बात हो रही है, बहुत हॉट डिस्कशन, मे भी हाथापाई तक का भी नौबत किसी के घर का सीन. Somebody knocks at the door, call bell. Immediately, क्या रिएक्शन होगा? पहले वो लड़ाई बंद होगी. Will put up a smile, open up the door. अच्छा आप हो. पहला क्वेश्चन, आप कब से खड़े हो? कहीं ये जो अंदर चल रहा था. हाँ आइए ना. Now we are having a broad smile on our face, as if nothing has happened. Person comes in, says, "No, no, today I'm in a hurry. मैं फिर आऊँगा. मैं तो ये मैसेज देने, ये कार्ड देने आया था, invitation." Person goes. अब जो इतना हॉट एनवायरनमेंट हो रहा था, उसके एक इनविटेशन कार्ड देने से वो चला गया और वो खत्म हो गया. अंदर खत्म हो गया. फिर से वापस, मैं तेरे को बता रहा था ना अभी. अब मैं विच टाइप ऑफ चेंज वॉज इट? फिजिकल. कुछ एक्टिविटी चेंज कर ली बिहेवियर लेवल पे. बिट हायर लेवल इज इमोशनल लेवल की चेंज. बहुत कोई ड्रंकर्ड है. वाइफ ने कह दिया बच्चे ने, पापा आप भी जब तक ये नहीं छोड़ोगे हम भी खाना नहीं खाएंगे. इमोशनली ब्लैकमेल सॉर्ट ऑफ. लेकिन कैन इट बी कॉल्ड अगेन अ परमानेंट? ठीक है उस दिन चलो चलो छोड़ो कोई बात नहीं हम सब मिल करके खाना. परमानेंट चेंज? थोड़ा सा बिट हायर लेवल इज चेंज एट द बुद्धि. जब किसी चीज को स्वीकार कर लेती है तो चेंज थोड़ी सी उससे ज्यादा देर स्टे होती है अंदर. बुद्धि से समझ लिया नहीं, इस तरीके से घर में रोज रोज झगड़ा क्या पड़ोसी ये सब चीज नहीं, आराम से बैठ करके सुलझाएंगे घर का. इतनी सी चीज होती है, इतना सा छेक होगा, बाहर वाले तो इसको बहुत बड़ा कर देंगे. अपनी इस चीज को बुद्धि से क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते. लेकिन कई बार हम बुद्धि से भी समझने के बावजूद भी, जैसे ड्रिंकिंग की उदाहरण ले रहे थे, अगर हम काफी डॉक्टर्स की इवनिंग्स देखें वो कैसे स्पेंड करते हैं, गोइंग टू द क्लब्स एंड ड्रिंकिंग एंड गोइंग टू द पार्टीज, हैविंग दिस मैनी बैग्स एंड ऑल. जबकि उनको तो इंटेलेक्ट में सब क्लियर है ना कि किस किस सिस्टम के ऊपर इसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा. बुद्धि जानती है ना, पेशेंट को बताते भी है ना. लेकिन उस स्तर पर भी होते हुए क्या चेंज हो पाती है? फिर परमानेंट चेंज कौन सी है? दैट इज एट द कॉन्शियसनेस लेवल, जो यहां गॉडली यूनिवर्सिटी में हो रही है, डीप रूट लेवल तक. और जिसका इफेक्ट कब तक रहेगा? पूरा 5000 साल. कितनी परमानेंट ये चेंज, डीप संस्कारस में जा रहे. बाहर की दुनिया में अगर हम देखें तो 5 type of people हैं जो रिजिस्ट करते हैं एक तो चेंज को. दे फ्ली अवे फ्रॉम द चेंज, दे डोंट वॉन्ट टू चेंज, दे जस्ट इग्नोर चेंज, दे डिनाई चेंज बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू. मना बुद्धि के उस लेवल पर कि ठीक है हम तो जैसे भी हैं. लेकिन कुछ हैं those who embrace change, they want to change. लेकिन ये जो लोग हैं क्यों नहीं चेंज करना चाहते? उनको कुछ खो जाने का डर है. कहीं बदल लिया, नया अभी तक आया नहीं है हाथ में. सर्कस में दिखाते हैं ना, पता नहीं आपने पहले तो होती थी है ना, आजकल एक चीज को वो करके दूसरे पे जम, उसको छोड़ते हैं तो नहीं को पकड़ रहे, उसको छोड़े ही नहीं तो. सो वो फियर ऑफ लॉस तो अंदर से निकालना पड़ेगा तो ही तो नहीं को पकड़ सकते हैं. इसलिए ये 3 type के लोग मिलते हैं. एक तो वो हैं जो परिवर्तन कर दिखाते हैं, मेक द थिंग्स हैपन, हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ लॉ पीपल. Those who follow change, उन्होंने दे दिया कुछ डायरेक्शन, उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं. तीसरे तो पूछने वाले होते हैं, क्या हुआ आज, क्या क्या चेंजेस हुई. लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो एक इफेक्टिव लीडर कौन सा है? जिसमें पावर टू लिसन है. एक्टिव लिसनिंग भी एक बहुत बड़ा गुण है. पेशेंस से दूसरे को सुनना. कौन सी वैल्यू चाहिए इसके लिए कि हम दूसरों को सुन सकें? कौन सी वैल्यू चाहिए? धैर्यता, पेशेंस, कि क्या इनसे कुछ सीखा जा सकता है. अवेलेबिलिटी, लीडर के लिए ही हैज टू बी अवेलेबल. नाउ एक तो वो अवेलेबिलिटी वो फिजिकल वाली है. कई बार तो आजकल के अगर हम बाहर के ऑफिस में देखें तो कोट टंगा मिलेगा, चश्मा मिलेगा, लेकिन द पर्सन इज नॉट देयर. वो तो फिजिकल अवेलेबिलिटी भी नहीं है. हाँ, और जो मेंटल, अब क्या है, सामने आकर के कोई बैठ गया, अब वो बात कर रहा है. फिजिकली दैट पर्सन इज देयर ओनली. सुनो, आपने क्या कहा था? मेंटली ही इज समवेयर एल्स. मेंटली इज नॉट अवेलेबल टू दैट पर्सन. आप कहेंगे बार बार दादी जानकी को, दीदी कोट करते हैं. सचमुच में हमारे लिए अगर हम कहें कि बीक के स्टूडेंट्स में भले बाबा को फॉलो करना है तो एक रोल मॉडल बन चुकी हैं वो. हम बहुत से बीकेस के लिए दूर से देखा, कहते एक फॉरेन की बहन आई बता रही कि दादी अपने रूम में, शी वॉज टू गो टू द स्टेज, टाइम बहुत कम था, और बाहर एक बहन बार बार झांक रही है ऐसे दादी से मिल, वेरी इम्पेशेंट टू मीट दादी. सम प्रॉब्लम वॉज गोइंग ऑन इन साइड कि एक झलक दादी की. तो बहने उनको पीछे कर रही, सुनो छोड़ो छोड़ो ना, ये दादी को भी स्टेज पे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बाद में बात करना. दादी ने सुन लिया, भेजो उसको. बात कही, विद इन सेकेंड्स द लेडी वॉज आउट विद हैविंग अ ब्रॉड स्माइल ऑन हर फेस. हाउ कुड शी गिव दैट टाइप ऑफ अ थिंग? ऑल द टाइम शी इज मेंटली अवेलेबल. जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा. ये योग है, यही प्रेजेंट में रहने की कला है. दिस इज द ओनली कैचिंग द मोमेंट ऑफ इटर्निटी है. बैठे यहां हैं, बाहर की दुनिया में भी, हु इज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, दैट स्टूडेंट इज वेरी मच देयर ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट. कंपार्टमेंट केसेस और वो आइदर थिंकिंग पिछले सैटरडे वहां गए थे, ये करना है पास्ट और फ्यूचर में. और आज जो टॉप क्लास बिजनेसमैन है, दे आर हैविंग दिस ऑल दिस क्वालिटीज. क्या चाहिए टू बी अवेलेबल? वेरी वेरी हम्बल, ह्यूमिलिटी. लीडर के लिए टॉलरेंस होनी बहुत जरूरी है. सब उसके जैसे नहीं हो सकते हैं. दूसरा व्यक्ति हमारे से डिफरेंट है, उसके भी लाइफस्टाइल को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उसके लिए लव चाहिए. अंदर में कौन से गुण की जरूरत है? प्रेम. अडैप्टेबिलिटी, हर किसी के साथ एडजस्टमेंट, अडैप्ट. क्या चाहिए? मैच्योरिटी. इमैच्योर पर्सन कांट अडैप्ट, वो दूसरे को उसके अकॉर्डिंगली हर वक्त करने की कोशिश करेगा. डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी होना बहुत जरूरी है एक लीडर में. क्या चाहिए? नॉलेज, विवेक चाहिए अंदर का, परखने के लिए क्या ठीक है क्या गलत है. व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द इल्यूजन, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ट्रुथ क्या है, फॉल्स क्या है. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लीडर हैज टू टेक द डिसीजंस. क्लियर इंटेलेक्ट, क्लियर माइंड चाहिए उसके लिए. लाइन ऑफ इंटेलेक्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू टेक द डिसीजंस. जिनकी लाइन ऑफ इंटेलेक्ट क्लियर नहीं होती है, सुन अब बताओ ना, हम वहां जाएं कि नहीं जाएं? स्टूडेंट्स को हम बातें करते, सुनो उनके फंक्शन पे तू बताना, छोटी छोटी चीजों के लिए दे आर ऑलवेज ना ऑल द टाइम डिपेंडिंग अपॉन अदर्स ओनली। उनको कह रहे हैं कि आप डिसीजन लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी द टीचर द लीडर हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करने के लिए यू हैव टू हैव करेज, टीम स्पिरिट। उसको तो बहुतों के साथ मिलकर के चलना है ना, काम करवाना है ना, एलोकेशन ऑफ वर्क करना है ना, कॉपरेशन। अब इन आठों को आपको क्रैम ना करना पड़े। क्या याद आ रहा आठ से, क्या याद आ रहा जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आप पे ही पहनने चले? अष्ट शक्तियां, सहन करने की शक्ति, अकोमोडेट करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की, जजमेंट की, पावर टू फेस, कॉपरेट, विड्रॉ एंड बैकअप। लर्न हो गया होगा। अब गणेश जी का नाम एक है गण नायक, नायक है तो लीडर है गण का। अब बाहर की कहानियों के मीनिंग भी इधर आकर के पता चलते हैं। अब वो आए, पार्वती जी अंदर थी, बेटे को खड़ा कर दिया एज अ बॉडी गार्ड, किसी को अंदर नहीं आने देना। अब वो इतने सालों की तपस्या के बाद आ रहे, रोका उसको शंकर जी को ऐसा, तो वो बच्चा तो बहुत करेजियस, तो सिर काट दिया ऐसे। चलो ठीक है, अभी बच्चा नहीं पहचान पा रहा, अरे तू तो फादर है, वो तो पहचानता होगा ना अपने बच्चे को, तभी तो घर आया ना। कौन सा सिर काटा था? ईगो। और उस पे एलिफेंट का ही फेस क्यों? कुछ ना कुछ वो कह रहा ना, पावर टू लिसन, उसके बड़े बड़े कान, वो एक लीडर की क्वालिटी दिखाई हुई है। हाँ, पहले से किसी बड़ा नाक, पहले से किसी चीज को इंट्यूशन हो जाना क्या होने वाला है। फार साइटेडनेस, स्टमक, अडेप्टेबिलिटी, हर किसी को अकोमोडेट करना, स्मॉल आईज, हैविंग अ फार साइटेड विजन, लेग्स, एक लेग मुड़ी हुई और दूसरा उठने के अंदाज में, जैसे एवर रेडी टू डू द वर्क। और जितने भी फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं, ग्राउंडेड ऑन अर्थ, impartial, accurate, quick decisions. So लड्डू भी दिखाया हाथ में, टीम स्पिरिट, रिद्धि सिद्धि दो वाइस भी दिखाई है, सिद्धि मन एक्सपर्ट इन डूइंग द थिंग्स। सो कहीं पे आपको मेंशन करनी पड़े, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ था ये सब चीज, लेकिन यू कैन जस्ट डेकोरेट योर आंसर। कहीं पे छोटा भी पूछा जाए। नाउ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल, जैसे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग मॉडल होता है जो कि एक कंपस की तरह काम करता है कि किसी उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, उसके लिए पूरे के पूरे उसमें हम स्टेप्स हैं वो प्लान करते हैं। इसी तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट, दिस प्रोवाइड्स अस पर्सनल दिस प्रोग्राम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ये एक तरीके से प्लानिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स है। अब सतयुगी दुनिया कैसे आएगी जब एक एक इंडिविजुअल अच्छा बन जाएगा? तो समाज, समाज में है कौन? हम ही तो हैं। परिवार स्वर्ग कैसे बन जा सकता? पांचों ही रहने वाले अपने आप को, सब अपने आप में बदलाव कर ले। सो इसलिए इंडिविजुअल प्लानिंग बहुत जरूरी है, उसमें जो काम करने वाले हैं। आइडेंटिकल स्टेप्स हैं दोनों के, इस मॉडल के और इस जो पर्सनल सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप का जो जो प्रोग्राम है। हमारा जो इनसाइट है, अंदर की विजडम है, हमें हेल्प करती है कैसे ये मॉडल काम करता है और कैसे दोनों में ये आइडेंटिकल स्टेप्स हैं, कि हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली क्या वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन जब हम अपने मिशन पे चलते हैं, कभी हो नहीं सकता कि इसमें हर्डल्स ना आए, हो सकता? फिर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, स्ट्रेटजीज क्या अपनानी है, हमारी एक्शन प्लान है अकॉर्डिंग टू आर दिस अलाइंड होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजीज हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लानिंग, फिर उसको इंप्लीमेंट करना। ये दोनों ही मॉडल्स में ये स्टेप्स काम करेंगे, चाहे हम कॉरपोरेट प्लानिंग मॉडल की बात कर रहे हैं, उसमें भी एक फोकस होता है, एक विजन होता है, अंदर की विजडम से बैरियर्स को जानते हैं, थ्रेट्स को जानते हैं, अपॉर्चुनिटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सब स्टेप्स। और इस मॉडल में भी हमें चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी चाहे हम बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएं, फोकस से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक की स्टेज तक, विल हैव टू बी फ्री फ्रॉम प्री कंसीव्ड नोशंस, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के, साक्षी भाव। की टू स्टेबिलिटी क्या है, स्थिरता की कुंजी क्या है, बैलेंस। कितने टाइप के बाबा बैलेंस की बात करते, लव एंड लॉ का बैलेंस, लौकिक और लौकिक का बैलेंस। अगर खाली लौकिक की तरफ हो गया स्थिरता आ सकती, खाली और लौकिक हो गया स्थिरता आ सकती, बैलेंस। किस किस चीज में बैलेंस और चाहिए, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर इफेक्ट इसमें भी डाला है तो ही आज हम इस प्रेजेंट में हैं, और जो कुछ इस मोमेंट में करेंगे इट्स गोइंग टू इफेक्ट आर नेक्स्ट मोमेंट आल्सो। प्रीवियस मोमेंट का भी इसके ऊपर इफेक्ट है और ये मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट पे भी इफेक्ट डालेगा, बैलेंस। दूसरा जो बैलेंस बहुत जरूरी है, हार्ड थिंकिंग एंड सॉफ्ट थिंकिंग में, ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर। हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी इज कनेक्टेड विद दिस हेमिस्फीयर, राइट पार्ट कनेक्टेड विद द अदर पार्ट। अब जो ये वाला पार्ट है राइट, माना लेफ्ट हैंडर्स जो हैं, एक हम रिसर्च पढ़ रहे थे एक सी जर्नल में, दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव लेफ्ट हैंडर्स। एनीवन सिटिंग इन दिस ग्रुप लेफ्ट हैंडर, जो लेफ्ट से करते अपनी क्वालिटीज, दे आर वेरी इंट्यूटिव, दे आर वेरी क्रिएटिव, इमोटिव। ये पार्ट छोटे बच्चे का ये पार्ट बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, परसेप्शन, तो उसमें थॉट्स नहीं होते, वो रीजन आउट नहीं कर सकता। इसलिए छोटेपन में जितना अच्छा एनवायरमेंट हम बच्चे को दे देंगे ना, 6 मास का बच्चा है, साल का, 2 साल का, उसकी सारी पर्सनैलिटी उस परसेप्शन पे डिपेंड कर रही है। उस टाइम उसमें कोई थिंकिंग होती ही नहीं है, सारा ये पार्ट डेवलप्ड होता है उसका। धीरे धीरे हम उसको ये लॉजिकल, एनालिटिकल, रैशनल, ये पार्ट डेवलप होता जाता है, और ये पार्ट फिर बिल्कुल ही, लेकिन मेडिटेशन के दौरान ये पार्ट इंट्यूशन वाला, क्रिएटिविटी वाला, सतयुग में ये दोनों ही काम करेंगे। कलयुग तक आते आते कौन सा हो जाता है ज्यादा, लॉजिकल, एनालिटिकल, ऑल द टाइम रीजनिंग आउट द थिंग्स। इसलिए दोनों को करने के लिए एक्टिविटी ऐसे ही कि अगर हम ब्रश राइट से कर रहे हैं तो इस हाथ से करेंगे तो ये एक्टिव है। कुछ भी छोटे छोटे काम डे टू डे लाइफ के, इस हैंड से कुछ ना कुछ यूज करें। और कुछ लोग हैं जो दोनों हैंड्स को अच्छे से यूज करते हैं। अब सबसे पहले जैसे फैक्ट्स, इनसाइट पर्पस एंड वैल्यूज। अब जो चेंज आ रही है, किसी भी, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की चेंज की बात है, पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में कुछ चेंज हो रहा है, इंडिया का पर्सपेक्टिव, कोई कुछ भी, एनी टाइप ऑफ चेंज इज गोइंग ऑन, चाहे एक इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है। एडोलेसेंट पीरियड में इतनी ज्यादा चेंजेस आती हैं 13 to 19 ईयर्स तक के एज ग्रुप के बच्चों में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बहुत स्ट्रेस रहता है, उनको पता नहीं चलता अपने आप को उन चेंजेस में कैसे कॉप अप करना है। इसलिए कहीं पर भी ये चेंज आ रही है, किसी भी टाइप के क्राइसिस पीरियड है, वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पीरियड तो होता ही है। और इस उसके दौरान हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, उन स्ट्रेस और स्ट्रेन से बचते हुए कैसे अपने आप को कोप अप करना है उस चेंज में। और लीडर के ऊपर तो जब चेंज किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज्यादा उसके आप कॉप अप करना पड़ता हो, कितनी एंग्जाइटी रहती होगी उसको, उसको तो पूरी टीम को चलाना है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज है ठीक है आ गई ऊपर से, लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, आर दे रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। कंप्यूटर्स आ जाएं सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट की तरफ से प्लान आ गया, आर द टीचर्स टीचिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल रेडी टू लर्न कंप्यूटर्स। यहां पर बात आती है, यहां पर ये मॉडल और भी ज्यादा, कि वहां पर काम करने वाले लोगों की हम उस मेंटेलिटी को भी देखें जा चेंज करने की, खाली हम अपने आप बाहर की चेंज के हिसाब से कितनी देर अपने आप को एडजस्टमेंट करते रहेंगे। दो चीजें आएंगी, या तो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करें हम अपने आप में, या तो फिर कोलैप्स हो जाए। यहां भी तो ऐसे, या तो हम अपने आप को बदलें, या तो इस मार्ग से। ये एक जगह पर नहीं देखा गया, कहीं पर भी कॉर्पोरेट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सीन, कहीं पर भी बाहर की चेंजेस जो आ रही हैं, अगर चेंज नहीं है, भले इकोनॉमिक फील्ड की बात हो रही है, अगर हम अपनी इकोनॉमिक फील्ड में अपनी इंडिया की पॉलिसीज चेंज नहीं करते, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो में आ रहा है, आइदर द ट्रांसफॉर्मेशन और कोलैप्स, फेलियर की तरफ फिर तो, नहीं तो। एक ही चीज कॉन्स्टेंट है इस दुनिया में, दैट इज चेंज। यस, क्यों वो चेंज नहीं कर पाते हैं, प्रेशर एट द वर्क प्लेस, क्या क्या चीजें उनके सामने आती हैं, प्रेशर आ गया ये करो, लेकिन उनके अपने कोई रिलेशनशिप्स भी हैं, उनके हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। अब शिफ्ट है 10 बजे तक चल रही, 12 बजे तक, फैमिली लाइफ तो बिल्कुल निग्लेक्ट हो रही, हेल्थ के ऊपर उसका चीज का क्या इफेक्ट हो रहा, कितने को पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको ऊपर जा रहा इस चीज से नीचे आ रहा, और स्ट्रेस लेवल फियर लेवल उसका बढ़ रहा या कम हो रहा। जो अच्छी कंपनीज है ना, वो ऐसे नहीं है इन चीजों को नकारती हैं, वो देखती हैं, उनकी हेल्थ के लिए ऐसे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, कई बार आपने देखा होगा, बढ़िया उनके बहुत से बीकेज ओआरसी में, एटलीस्ट बहुत कारपोरेट सेक्टर की सेवा चल रही है बहुत सी कंपनीज में, टॉप टू बॉटम स्टाफ के लिए, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड बॉटम मैनेजमेंट, ऑपरेटर्स लेवल तक के। और जब उनको फीडबैक उससे मिलती है, इतनी बढ़िया एफिशिएंसी, इतना रिजल्ट, इतना आउटपुट, उनमें इतनी कमिटमेंट, डेडिकेशन, वहां तो कॉन्टिन्यूटी या चेन ऑफ प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं। जून जुलाई में हमें भी मौका मिलता है वहां जाने का, 50 डेज की हमारी हॉलीडेज में। अब इसमें आपके यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ट्रेनिंग का एक मॉडल बना हुआ है बुक्स में, आपके डायग्राम, लेकिन उसके स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है जो फैक्ट्स, फैक्ट्स में स्वॉट, व्हाट इज स्वॉट, इट्स एन एक्रोनिम ऑफ फोर वर्ड्स, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ वीकनेसेस, ओ अपॉर्चुनिटीज एंड टी थ्रेट्स। चारों ही चीजों का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, जितना ये जरूरी है कि हमारे अंदर की कमजोरियां कौन कौन सी हैं, उतना ही जरूरी है हमारे अंदर के गुड पॉइंट्स कौन से हैं, तो ही तो उनको यूज में लाएंगे। स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं और फ्यूचर में किन किन चीजों से खतरा हो सकता है, वी हैव टू बी अवेयर। जो होगा अच्छा होगा, नो, वी हैव टू बी अवेयर। कैसे कैसे तुम्हारे अपने मार्ग से विचलित करने के लिए क्या क्या परीक्षाएं आ सकती हैं, वी हैव टू बी अवेयर। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन चांस है, उनको फिर अवेल करना। कहा जाता है द अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर ओनली वंस, यू नो, दोबारा नहीं खटखटाती। हमें ही पहचानना पड़ता है, ओ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो। सो स्वॉट, सबसे पहले तो इस चीज को हम जान लें। थोड़ा सा टेक्निकल है, जिनको थोड़ा सा लग रहा हो लेट सोए हैं, जाकर के पानी पी करके फिर वापस आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग ऑन, क्योंकि हम सबके लिए भी स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल यात्रा पर भी। स्वॉट एनालिसिस करते पता चलेगा हम खड़े कहां पर हैं प्रेजेंट में, हमारी स्थिति कहां पर है, दिन में कितनी बार गुस्सा कर लेते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन, जाना कहां है, कहां तक पहुंचना है, किस लेवल तक, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है किसी भी चीज को करने के लिए, क्वालिटीज, वैल्यूज, फिर उसके बाद उसे अटेंशन देकर के हम अपने उस रास्ते पे चलते हैं। ये सारा रास्ता, सारा यात्रा कहां से शुरू होती है? बकेट पानी में हम कुछ पैबल गिराते हैं तो वो जो रिपल्स उठती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? जिस जगह पे, सेंटर से फिर बाहर की ओर। तो ये यात्रा भी कहां से शुरू हो रही? सेल्फ। सेल्फ से पहले ब्रेन में, वट एवर वी आर थिंकिंग, माइंड में कोई भी थॉट अराइज होता है, फर्स्ट इट इफेक्ट्स आर ब्रेन। ब्रेन से पूरी बॉडी में उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, बॉडी से हमारे फिर बाद में रिलेशनशिप्स, सोसाइटी, एनवायरमेंट, द वर्ल्ड एट लार्ज, एक एक हमारा संकल्प पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। हर पल हम अपने संकल्प से ब्रह्मांड में एक ऑर्डर बुक कर रहे हैं और जो कुछ बुक कर रहे हैं वो ही हमें मिल रहा है। इसलिए समझना पड़ेगा कि ये कहां से शुरू हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए स्पिरिचुअल इंसाइट चाहिए, विजडम चाहिए। दो टाइप के सेल्फ की बात करते हैं इस सेल्फ को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये विजडम, दो सेल्फ को अंडरस्टैंड, इननेट सेल्फ एंड एक्वायर्ड सेल्फ। अब इननेट सेल्फ तो हम जानते हैं, आत्मा, कॉन्शियंट एनर्जी, स्पिरिट। कैसी है ये? चमकता हुआ सितारा, रात को आसमान में सितारे देखते टिमटिमाते, आत्मा भी एक चमकता हुआ सितारा है। वेयर इज इट लोकेटेड इन द बॉडी? सेंटर ऑफ द फोरहेड। अब इसके अंदर क्या है? थ्री फैकल्टीज, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कारस, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहीं याद रखने के लिए बाहर वालों के, बीकेस के तो अंदर तक चला गया, चाहे तो सिम कहें इसको, मोबाइल है ये सिम है, बिना सिम के तो कहीं भी नहीं, बात ही नहीं हो सकती। एक्वायर्ड सेल्फ में क्या आता है? ईगो, रोल, इमेज, क्या पोजीशंस हैं हमारी, क्या हमारी स्किल्स हैं, क्या पोजीशन है, क्या हमारे बिलीव्स हैं, क्या हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? ईगो एंड ऑल, एक्वायर्ड सेल्फ से। अब जो इनिट सेल्फ में हमें तीन कहे, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कारस, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कमेटी होती है, सारा एक्वायर्ड है जन्म के बाद जो कुछ भी पाया। जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लानिंग कमेटी होती है, इस सेल्फ के अंदर भी एक प्लानिंग कमेटी है, उसका नाम माइंड है। जैसे उसमें भी एक डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है, इस सेल्फ के अंदर भी आइडेंटिकल है वो सारा सिस्टम, ये इसके अंदर भी एक इंटेलेक्ट है। जो डिसीजन ले लिया फिर डिसीजन कमेटी ने, उसी को फिर एक्शन में लाया जाता है। प्लानिंग कमेटी ने प्लान कर दिया, डिसीजन कमेटी ने उसके ऊपर डिसीजन ले लिया, निर्णय कर लिया, तो उसको हम माइंड तो कहेगा ये भी शर्ट अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी किसी शोरूम पे, बुद्धि कहेगी इतने पॉकेट में पैसे हैं, ये हैं, तो ये पैसे निकाले दे दिए, कर्म में परिवर्तित हो गया। अब जो एक्शंस हम करते हैं, रिपीटेडली करते जाते हैं, तो वो हमारी क्या बनता जाता है, हैबिट्स, बिहेवियर एंड ऑल, जो हमने ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इंप्रेशंस के फॉर्म में जाता रहता है। अब इंप्रेशंस भी मोमेंटरी इंप्रेशंस, टेम्परेरी इंप्रेशंस एंड परमानेंट इंप्रेशन। सुन रहे अभी, मोमेंटरी कैसे, पानी पे लकीर के समान। अगर आपको 10 दिन बाद ये सारी चीजें वो करना है, तो जाकर के इस लेसन को आज ही पढ़ना पड़ेगा, मन करना पड़ेगा बार बार, दो चार करेंगे वो सारा अंदर तक जाएगा, धीरे धीरे ये टेम्परेरी इंप्रेशन बनता है। 21 डेज तक किसी चीज को हम करते हैं तो वो टेम्परेरी इंप्रेशन में आ जाता है, जिसको हम कहें रेत के ऊपर लकीर। 40 टाइम्स किसी चीज को कर लेते हैं हम, तो परमानेंट में आ जाता है, जिसको पत्थर पे। इसलिए हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, इसके पीछे मीनिंग था 40 टाइम्स। बार बार कोई चीज जब हमारे सबकॉन्शियस से पूरे डीएनए तक पहुंच जाती है ना, तो वो वहां पे डिजाइन ऑफ द बॉडी भी जैसे पूरा वो चेंज होने लगता है, कि ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हम लोग डेली मुरली क्लास के बाद हमारे सेंटर पे सब सर्कल में बैठ जाते हैं, साइको एरोबिक्स का बेसिक जो, और एक चीज बाद में बोलते हैं जरूर, मैं तंदुरुस्त थी, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त ही रहूंगी। अब बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, बार बार बोल रहे हैं, और किसी चीज को हम 90 टाइम्स कर लेते हैं, 90 बार, तो और डीप संस्कारा तक चला जाता है। हर पल हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, वो इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाते जा रहे हैं। फोल्डर फोटोग्राफ्स के फॉर्म में। अब सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में कोई पावरफुल वाली बात नहीं है, पावरफुल है कि क्या है, हम कह देते हैं सबकॉन्शियस माइंड, हम भर क्या रहे हैं उसमें, पावर उसमें है। किसी कमरे में गोल्ड भरा है कि कीचड़ भरा है, हम भर क्या रहे हैं उसी पे। और इस सब ये हमारा हेड टॉप कंप्यूटर की तरह है, जब चाहे इसमें से हम डाटा अपना रिट्रीव भी कर सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के लिए 90% इज जस्ट द कॉन्शियस माइंड एंड 10% इज द कॉन्शियस माइंड एंड द 90% इज द सबकॉन्शियस माइंड। आइसबर्ग के लिए कहते हैं ना हिमशिला, ओनली द पीक इज विजिबल ऑन द टॉप, बाकी का सारा कहां पर, भीतर 90% उस सबकॉन्शियस माइंड तक। मेडिटेशन में क्या है, वो एक्चुअल में वही व्हाट एवर इज लाइंग डॉर्मेंट इन दैट, वो सारी चीज को बाहर निकालते हैं। अब जो बुद्धि जो कार्य करती है, एनालाइज, रीजन, डिस्क्रिमिनेट, इवैल्यूएट, सिंथेसिस, ये सारे बुद्धि के कार्य हैं, एक तरीके से फिल्टरिंग का। अब थॉट्स तो बहुत भेजी जा रही है, प्लानिंग कमेटी, डिसीजन कमेटी, सारे वो फिल्टर हो, नहीं भी सुनो ये काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं, फिल्टरिंग। कभी भी बुद्धि में कभी कचड़ा आ जाए, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की पॉपुलैरिटी मालूम है किस चीज पे डिपेंड करती है, कितने सर्विस स्टेशंस हैं। और जितने ब्रह्मा कुमारी के इस प्रोडक्ट के सर्विस स्टेशंस हैं शायद ही होंगे किसी कंपनी के। कभी भी बुद्धि में कचड़ा आ जाए तो जरूर साफ करवाने, रेगुलर मुरली क्लास करें, रेगुलर बहनों से मिलें, फिल्टरिंग हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कहें तो बीकेएस के लिए हॉस्पिटल्स हैं, बहनें तो नर्सेज हैं, एनेस्थीसिस्ट हैं, वो तो सुप्रीम सर्जन है। सो ये ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स भी फिल्टरिंग में, बुद्धि में आए हुए कचड़े को साफ करती हैं। कितनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इतने सर्विस सेंटर्स नहीं होंगे 143 कंट्रीज के, कितनी भी बड़ी कोई एमएनसी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, और उसमें फर्दर उनके कितने 8,500 वो डाटा दे रहे हैं, इतने सर्विस स्टेशन। ये बुद्धि में क्या क्या कचड़ा आता है, ये चार तरीके का, मेंटल पोजिशनिंग, अजम्पशंस, मेंटल लिमिट्स, एसोसिएटेड मेमोरीज। मेंटल पोजिशनिंग जो अक्सर करके कह देते कि सिचुएशन सेम है, किसी को तो चांद में भी दाग नजर आया, किसी को चांद में भी कीचड़ कमल, ये ऐसी ऐसी हम मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना, कीचड़ में भी कमल, कमल में के भी रोज के साथ थॉर्न्स, थॉर्न्स के साथ रोजेस। और एक पोइट तो अपनी उसका तो बढ़िया से बढ़िया तो चांद के साथ ही, वो इतनी हसीन उसके, एक्चुअल में तो चांद पे क्या है वो तो एक साइंटिस्ट ही बता सकता है, खड्डे है क्या है वो तो भले अपना उसके साथ, मतलब एटीट्यूड की बात हो रही है, ये तो सिंपल इट वॉज इन अ लाइटर वेन। कितनी भी बढ़िया जगह पे चले जाए आके, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन जिसकी राइट मेंटल पोजिशनिंग है, कुछ भी था जी, दिस वॉज एक्सलेंट। मेंटल लिमिट्स, मैं ये नहीं कर सकता, एक अपने आसपास एक सीमा बना ली, आई कांट डू दैट। बच्चे को बार बार कहते रहना तू नहीं कर सकता, तू तो गधा है, तू तो क्या करके दिखाता है, बच्चा गधा बन के दिखा देता है या नहीं दिखा देता, बार बार कह रहे हो ना, देखना कहीं तू मत ये चलाना तू गिर जाएगा, उसकी मेंटल लिमिट्स हम ही वो करी जा रहे हैं, अपने लिए भी करते हैं। हम आपसे कहते हैं, मान लो अभी आप 10 बार कहते हो मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, 11वीं बार क्या होगा, करके देखो एक्सपेरिमेंट, मींस क्या करा, हमने थॉट दे दिया ना, मैं तो ठीक नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। इसलिए बीकेस में क्या फर्स्ट थिंग दे डू, से गुड मॉर्निंग टू गॉड, गुड मॉर्निंग टू बाबा, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। कितने भी सम्मान तो काहे के लिए लेते हैं, मेंटल लिमिट्स को क्रॉस कर जाएं। तीसरा और बुद्धि में क्या आ जाता है, पहले से अज्यूम ही कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए। मान लो कोई रूम में लेटा हुआ है, आंखें खुली हैं, मुस्कुरा रहा है, 10-11 बजे का रात का टाइम, कोई घर में दीवार फांद करके आया, उस रूम में भी आ गया, सारा सामान समेटा, गोल्ड लिया, कैश लिया और चला गया। अब क्वेश्चन आता कि जो लेटा हुआ हंस रहा स्माइल कर रहा, रोका नहीं उसने क्या? अब कहीं से बाहर वालों से क्वेश्चंस पूछे तो बहुत टाइप के आंसर्स करते हैं, वो साधु होगा, वो तो इस स्वभाव का होगा, कोई बात नहीं है, वो ऐसा, नंबर ऑफ। एक्चुअल में क्या, टू इयर्स बेबी जस्ट स्माइलिंग, ही डजंट नो कि कौन खोल रहा है, क्या लेकर के जा रहा है। लेकिन हमने अज्यूम, ये सब सुनते ही कि कोई लेटा हुआ है, क्या इमेज में आता? हाँ, एसोसिएटेड मेमोरीज, पहले से जो उसके बेस पे हम अंदाज लगाते चले जाते हैं। हम आपसे वैसे ही पूछ रहे हैं, मालूम है हमें, आपको तो बाहर वालों से पूछते हैं, हाँ साबुनदानी में क्या होता है, साबुन, हाँ नमकदानी में नमक, मच्छरदानी में बोलते हैं मच्छर। दिस इज एसोसिएटेड मेमोरी। तो एक और जो आप लोगों के इसमें बताया हुआ, मान लो किसी ने कोई चीज तोड़ दी, हाँ आपका जो भी केयर टेकर है, आपने आए और उसको डांटा कि देखो ये आपने फ्लावर वॉज है, ये पॉट है, आपने तोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम आपके मना करने के बाद फिर वो केयरलेसली सफाई करी और फिर से वो टूट गया। इस टाइम आप इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हो कि आगे से तूने तोड़ा मैं नौकरी से निकाल दूंगा तेरे को। अब आप थोड़े दिन के बाद आते हो तो वो टूटा हुआ था और उसको ऐसे ही जोड़ के रखा हुआ था, शक क्या जाएगा? अब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, वो कहता है कि मैंने सचमुच में इस बार नहीं तोड़ा है, मेरे से नहीं टूटा है। लेकिन एसोसिएट मेमोरी के हिसाब से कहां पर ध्यान जाएगा एकदम से, क्योंकि दो बार वो, ये सारे बुद्धि में क्या है, कचड़े हैं। कोई कह रहा था एटलीस्ट हम तो अभी तक उस चीज को नहीं कर पाए हैं, मना वी आर ऑन आर जर्नी, कि जब भी किसी से मिलो ना, ऐसे मिलो जैसे आप पहली बार मिल रहे हो। बट इट्स विट पास्ट मेमोरीज बिल्कुल डिलीट, जैसे यू नो नए, और वे व्यक्ति भी तो हर पल बदल रहा है ना, ही इज नॉट द सेम 10 years बैक जो था। अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मान लो यू आर वर्किंग, आप अपने किसी काम में बिजी हो और कोई आपके पास आपका फ्रेंड बैठा है जिनके साथ आप अपने कुलीग के साथ काम कर रहे हो, बाहर से कोई आता है, हाँ अच्छा ये अब इन्होंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली है, जैसे ही वो व्यक्ति बाहर गया वो से सुन जरा बच के रहना इससे, अभी तक सब ठीक चल रहा था, बढ़िया से अच्छे से काम कर रहे थे, देवर कलीग्स, अब उसने ये एक चीज कही, जरा बच के रहना इससे, क्या होगा? अब जो काम करा वो पर्सन वापस आया, चलो करें वो काम दिखाओ, नहीं नहीं फिर कर लेंगे, नाउ वी ट्राई टू हाइड द थिंग्स, जस्ट वन सेंटेंस। अब सोचने की बात है, हो सकता है उसके साथ उसका रिलेशन पहली बात माइट बी डिफरेंट, माइट बी जिस टाइम की आप बात कर रहे हो वो पर्सन आज वो बिल्कुल बदल चुका हो। इसलिए मना किस हद तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज की, कि जब भी किसी से मिलो एज इफ वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कितनी गुड वाइब्रेशंस आएंगी अंदर से। अब इस आइसबर्ग को समझने के लिए जो सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार के बहुत सी अंडरकरंट्स हैं, उन अंडरकरंट्स को जानना जरूरी है। अगर हम दूसरे सी के साथ इसको कंपैरिजन करके देखें कि ओनली द टिप जहां पे विजिबल की बात कर रहे हैं, मान लो 180 किलोमीटर की स्पीड पर आर एक स्टॉर्म आया है सी में, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो आइसबर्ग किधर को मूव करेगा? यूजली हम कहते हैं कि नॉर्थ टू साउथ ही करेगा क्योंकि उस तरफ से स्टॉर्म आया, लेकिन अंडरकरंट अगर साउथ टू नॉर्थ है तो किधर को जाता है वो? ऑपोजिट। अब हमारे अंदर कितने अंडरकरंट्स हैं? कॉन्शियस माइंड तो कुछ और प्लान करी जा रहा है, शुड बी अवेयर ऑफ दोज अंडरकरंट्स ऑल्सो जो हमारे अंदर चल रहे हैं। पहला अंडरकरंट जिसको समझना होगा, फॉर्म्स ऑफ ईगो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईगो। ईगो बहुत तरीके से आ जाती है, हमें पता नहीं चलता है, पावर पोजीशन, स्टेटस, ब्यूटी, मनी, इवन स्पिरिचुअल ईगो आल्सो। 2 बजे उठते हैं जी हम तो, देखो देखो सब सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं बाबा ने क्या कहा हुआ है, व्हाट इज इट। देखो देखो ये इतना गुस्सा कर रहे हैं, देखो देखो व्हाट इज इट। और सबसे हम एक बुक पढ़ रहे थे, बाकी सब ईगो से निकला जा सकता है लेकिन स्पिरिचुअल ईगो से निकलना इट्स नॉट सो इजी। हम लोग कितनी कैजुअली ये सेंटेंसेस सुन लेते हैं, नाम मान शान की अंदर की प्यास, हा? कोई होगा जिसमें नहीं है? ब्रह्मा बाबा ने इसको कैसे जीता? अगर आप 69 के आसपास की मुरलियों को पढ़ करके देखें, समझ जाना जब ये मुरली चलती है कि ये 69 बाबा के संपूर्णता के, 33 इयर्स लगे ब्रह्मा को संपूर्ण बनने में, उन मुरलियों में क्या मिलेगा? बच्चे ब्रह्मा को याद करने से तुम्हें राख भी नहीं मिलेगी। मैं तो खुद पढ़ रहा हूं उससे, वो पढ़ा रहा है, आई एम ए स्टूडेंट। मैं तो भोजन करने बैठता बीच बीच में भूल जाता, और बच्चे आजकल कोट करते हैं बाबा भी तो भूल जाते थे, क्यों कह रहे हैं बाबा, किस चीज से निकलने चाह रहे थे ये सब चीज। सो हाई सो ग्रेट ब्रह्मा की गाथा कहीं नहीं जा सकती है। सब कुछ करके भी जिसने अपने आप को छुपा लिया वो ब्रह्मा। इन ईगो से, हर टाइप की ईगो से, पास्ट लाइफ क्या कुछ करके आए हैं उसका इफेक्ट कहीं कई बार बीच में इतनी मेडिटेशन करने के बावजूद भी आ सकता है। अरे भाई तुमने ऐसा काम कर कैसे लिया, वेरी मच्योर पर्सन, ओल्ड एट द, पता ही नहीं बुद्धि को क्या हुआ उस टाइम, इफेक्ट ऑफ पास्ट लाइफ। आपसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कैसे हो सकता। सो दैट इज दादी, कभी मैं नहीं कहती थी दादी, दादी हाथ जोड़ करके, कुछ दिनों ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे थे कुमार ऐसा है, दादी हाथ जोड़ करके कहती है, कोई भी स्कूटर लेकर के इतने उस टाइम पे बाहर नहीं, जैसे एक माँ कह रही होती है ना, दादी दादी वर्ड करके। मैं तुम्हें कहती हूँ, कभी दादी से सुना था? अपने आप की वो आइडेंटिटी से भी दूर। तीसरा एंसेस्ट्रल आता है, जिसको हम तीसरे टाइप के संस्कार, जेनेटिक संस्कार कह देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, कई बार उनमें से भी उस अंडरकरंट से में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथे हैं कंपनी, किन लोगों की संगत में बैठते हैं हम। कोयले की कोठरी में कितना भी सियाना चला जाए उसको लकीर अवश्य लगती है। हम तो बैठ जाते हैं बस, मैं कहता कुछ नहीं हूं दीदी, बस जाके उनमें बैठो। हर पल आंखों से कानों एक संस्कार बन रहा है जिस संगत में। इसलिए बहनें भले ज्यादा नहीं भी पढ़ी लिखी, मैंने हॉस्टल में से जब हम जाते थे बहनों की, भले 10th पास, उनकी वही भोली भोली बातें, वही इतना अच्छा लगता, एक इनोसेंस, नो श्रूडनेस, नथिंग, नो ओवर क्लेवरनेस। मान लो ये कुछ भी नहीं मिला, हाँ पास्ट लाइफ का भी कुछ ऐसा है, जेनेटिक भी नहीं, एंसेस्ट्रल भी बहुत बढ़िया परिवार में नहीं भी हुआ, मान लो इन सब में से चारों रूल करने के लिए, दैट इज विल पावर, विल पावर संस्कार। सो जैसे वोल्केनो ज्वालामुखी फूटता है, वॉल्केनिक करप्शंस होती हैं, लावा निकलता है, द लैंड बिकम्स मोर फर्टाइल, फुल ऑफ मिनरल्स एंड ऑल। सिमिलरली इस सेल्फ को जब हम अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, अंदर का जो वो इरप्शंस होती हैं, उससे इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसा भी इंसेस्ट्रल वो मिला हो, कोई सी भी, ये सारे ये बुद्धि की लाइन ऑफ इंटेलेक्ट क्लियर हो जाना, मन में पॉजिटिव ही संकल्प आना, बुद्धि का स्वच्छ हो जाना, संस्कारों का, पुराने संस्कारों का मिट जाना, अब इसके लिए भी एक एक्यूरेट क्रोनोलॉजी होती है हर चीज की। जैसे बेबी का कोई भी आपने साइकोलॉजी में अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर स्टाइल स्टेजेस होती हैं ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें भी हमारे इस चेंज में भी एक एक्यूरेट क्रोनोलॉजी है जिसके द्वारा हम ये सारे के सारे जिस तरीके से चेंजेस हैं दैट इज थ्रू मेडिटेशन। धीरे धीरे हमें उस अंदर तक के मौन तक पहुंचना होता है। वो चार चीजें क्या हैं जो क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजी इस एक्यूरेट क्रोनोलॉजी में चाहिए? पहली बात तो व्हाट एवर इज लाइड बरीड इन अस उस सबको बाहर निकालना, व्हाट एवर इज लाइंग डॉर्मेंट। पास्ट में क्या था उसके बेस पे हम अपने प्रेजेंट वो कर रहे हैं, जो अच्छी चीजें हैं उस सारे को हम निकाल सके। अब दोनों ही चीजें होंगी पास्ट में, गुड भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव से अपने आप को अवॉइड कर सके, जो गुड है उसको हम बेस बना सके। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा इस चीज के लिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। ये है हमारी एक्यूरेट क्रोनोलॉजी ऑफ चेंज। अगर हम वास्तव में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, क्वालिटी फ्रॉम इनसाइड आउट के लिए हमें 4 आर्स को समझना होगा। इनसाइड आउट, इनसाइड आउट अप्रोच, 4 आर्स क्या है? रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूटीन एंड रिलेशनशिप। इन सब के लिए समझने के लिए इननेट क्वालिटीज चाहिए। हम कितनी कैजुअली ये शब्द सुन लेते हैं रोल, है ना, क्यों आई है आत्मा वहां से पार्ट बजाने के लिए। बात करते हैं उस फिल्म में किसने ये रोल किया। कुछ आज भी ऐसे हैं जिनका रोल देखने के लिए दुनिया दीवानी है। क्या खासियत है उनके रोल में? खासियत है जब वो आर्टिस्ट एक्टर कुली के सेट पर होता है, ऐसे बढ़िया एक्टिंग करेगा कि एक रियल कुली को भी मात दे देगा। लेकिन जब घर जाता है ना, वहां जाके एक भी ट्रंक नहीं उठाता घर का, रोल था ना। अब वही एक्टर आ गया शहनशाह की शूटिंग पर, अब एक भी कुली का डायलॉग नहीं बोलता और घर आके अपने आप को राजा नहीं मानता। ये खासियत है उसके रोल की। हमने बाबा की मुरली का पार्ट शब्द समझा, हम भी तो रोल ही अदा कर रहे हैं। ऑफिस में है, एम्प्लॉयर के सामने है, तो एम्प्लॉय का रोल अदा हो रहा है। अगर खुद एम्प्लॉयर हैं, बॉस हैं, तो बॉस का रोल अदा हो रहा। अब अपनी गाड़ी में बैठ गए ड्राइव करने लगे, अगर बॉस समझ करके ही बैठ गए, रास्ते में जाते आते कमेंट्स देंगे, देखो इनको ओवरटेक भी नहीं करना आता है, देखो किस तरीके से, देखो क्या समझा हुआ। इफ आई एम जस्ट वन ऑफ द ड्राइवर्स अमंग द अदर ड्राइवर्स, देन नो कमेंट्स। बॉस की सीट से उतरे हुए हैं, अब घर आ गए, वाइफ के सामने है। अब कितना भी गड़बड़ का माहौल रहा ऑफिस में, अब उसको तो राशन चाहिए, उनको ये चीज चाहिए। अब सिंपली दैट पर्सन इज अ हस्बैंड टॉकिंग टू वाइफ, यू आर नो मोर अ बॉस नाउ। बच्चा आ गया, रोल फिर बदली हो गया। नाउ इज द फादर, बच्चे को क्या चाहिए? चाहे कितने भी दोनों हस्बैंड वाइफ में टसल हुई हो, लेकिन बच्चे के साथ तो वो रोल भूलना पड़ेगा। अब नए सिरे से बात हो रही है ना, रोल ही चेंज हो गया ना, फिल्म ही चेंज हो गई ना। अब अंदर से आवाज आई, बेटा आ गए ऑफिस से। अब मां के साथ कितनी ऊंची आवाज में बात करनी है, किस टोन में बात करनी है, क्या डायलॉग बोलना है, बेटे सुबह से इंतजार कर रही थी दवाई मंगानी है, अब हु विल डिसाइड कौन सा वहां उस फिल्म में तो स्क्रिप्ट राइटर कोई और होता है, यहां तो स्क्रिप्ट राइटर कौन है, कौन डायलॉग्स लिख रहा। ये रोल शब्द को समझना, हम कैजुअली सुनकर के मुरली में पार्ट अदा, मैंने हम अपने लेवल पे आपसे शेयर किया है कि सोचते हैं कि पार्ट ये शब्द रोल शब्द को समझा है, ये 4 आवर्स को। अब हर रोल का एक एक रूटीन होगा, हर रोल के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। और इसको तो बहुत से रिलेशनशिप है, अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, हस्बैंड वाइफ का, फादर सन का, कितने रिलेशन एक ही उसके साथ, वो भी डिफरेंट रोल्स ही अदा करता है एक्टर। सोल हम सबके अंदर क्या है, एक एक्टर बैठा है। अब सारी मदर्स का एक ही रूटीन होगा क्या, सारी मदर्स की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी क्या? इननेट क्वालिटीज चाहिए इन वर्ड्स को, इट्स नॉट सो सिंपल। दिन भर आज सोचते रहे अपने ही रोल रूटीन, कौन डिसाइड कर रहा, टाइम मैनेजमेंट कौन कर रहा। कहीं भी लाइफ में एक सेट रूटीन होता है, ये करना है ये करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम होती हैं, रिलेशनशिप बड़े हार्मोनियस चलते हैं। फिर कीज टू ट्रांसफॉर्मेशन, Step 3, पर्पस क्या है हमारा, मनी पावर को एक्वायर करना, ओनली काम काम काम, व्हाट इज द पर्पस। शॉर्ट साइटेडनेस, बंदर बुद्धि बाबा क्यों कहते हैं, कई बार कहते हैं ना, किसके लिए होता, हमारी ही शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। क्यों कहा जाता, क्योंकि एक उसको पकड़ने के लिए ना बंदर को एक नैरो सा पॉट रख देते हैं, उसके अंदर चने होते हैं, तो वह अपनी ऐसे करके डाल तो लेता है, अब चने भर लिए, अब उससे निकलती नहीं है क्योंकि नैरो होता है, इसलिए बंदर पकड़ा जाता है, छोड़ना ही नहीं आता। शॉर्ट साइटेडनेस है ना, अगर निकाले तो मेरे चने छूट जाएंगे, बहुत बहुत नैरो सोच रहा है ना, और जान गवा लेता। हम कितनी बार इतने शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं, इमीडिएटली मिलना चाहिए, मैंने इतना भला किया, डोंट आर नॉट वी सो शॉर्ट साइटेड, इमीडिएटली एक्सपेक्ट करते हैं। सो क्या पर्पस है, इसमें लिखा हुआ है कि दलवाड़ा मंदिर जब बन रहा था तो कोई निकला जीवन का मीनिंग क्या ये जानने के लिए, तो रास्ते में पहला ही मजदूर मिला, पूछा उससे क्या कर रहे हो, बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो आफ्टर व्हाट इज अ पर्पज, वाई हैव वी कम ऑन दिस अर्थ। दिख नहीं रहा पत्थर तोड़ रहा हूं, जैसे कि अपनी किस्मत को कूट रहा हो, और कितना खुश होगा ये दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, विद अ स्माइलिंग फेस दैट पर्सन इज डूइंग द सेम वर्क, सिंगिंग एंड विस्लिंग ऑल्सो, ना पूरा एंजॉय कर रहा। क्या कर रहे, हमारे यहां शहर में ना एक मंदिर बन रहा है, हम उस बहुत लोग आएंगे उसको देखने के लिए, हम उस मंदिर बनाने के लिए, हैविंग ए ब्रॉड स्माइल ऑन द फेस, सेम वर्क डिफरेंट आंसर्स। हम भी कहीं आप पे इस मतलब अपने लाइफ के पर्पस को समझें कि सिंपली हम बर्डन लाइफ तो नहीं लीड कर रहे, आर वी रियली एंजॉइंग, डू वी हैव द पर्पस इन आवर लाइफ। 4th है वैल्यूज होनी चाहिए, किस चीज को हम मूल्य दे रहे हैं, किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, इतने दिन से हम वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं। 5th इज विजन, हैविंग अ क्लियर विजन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेडमार्क लोगो के फॉर्म में होता है, जिसमें कि पूरा उनका विजन पता चलता है कि क्या करना चाहते हैं। एक कॉलेज का, किसी स्कूल का भी एक इंसिग्निया होता है, उसमें भी उनका हमारे भी माइंड में हर पल एक विजन रहे, जिससे अपने आप उस विजन को देखते ही फिर मेंटल एनर्जी कैपेबिलिटी वो स्किल्स हैं वो आप ही आने लगती हैं। कौन कितने विजन एक ही मुरली में बाबा हमें देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन ठीक है, विष्णु चतुर्भुज, अब मुरली सुनने के भी अलग अलग स्टाइल्स हैं, लेवल्स हैं। एक तो सरफेस लेवल पे हाँ बाबा नदियां सरोवर की बात कर रहे हैं, ये गोले का चित्र। अगर सूक्ष्म वतन में बादलों के पार फरिश्ता रूप में कंबाइंड, ये मीनिंग समझ में आने लगेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। डेप्थ में पोइम करते थे ना, सरल अर्थ करके फिर कहते थे भाव अर्थ ये है, मुरली के हर लाइन का भाव अर्थ है। अष्टभुजाधारी विजन, हैविंग द विजन क्लियर इन द माइंड, विघ्न विनाशक हूं, ये क्या है फोटोग्राफ्स में विजन में। कुछ लोग को लगता कि खाली वैल्यूज तो बहुत हाई फाई, नो, जो कुछ भी काम हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं अगर तल्लीनता से कर रहे हैं उसी में ही हमें वैल्यूज हैं वो दिखाई देंगे। छठा है बैरियर्स, विघ्न तो आएंगे तूफान तो आएंगे जब हम चलेंगे इतने बड़े मंदिर पर पाने के लिए। तीन चीजें हो सकती हैं, स्टॉर्म्स हो सकते हैं, लल्स हो सकते हैं, शीतलीकरण जिनको कहें, अंडरकरंट्स हो सकती हैं। स्टॉर्म्स क्या है, बाहर से जो प्रेशर्स आते हैं हमारे, वो तूफान है, वो विघ्न है। लल्स क्या है, कई बार हम ही अपने आप में मोटिवेशन ही नहीं फील कर रहे, बर्न आउट हो गए, जैसे एनर्जी नहीं है काम करने के, चल रहे हैं बोझ ढो रहे हैं। तीसरा क्या है, हमारे अंडरकरंट्स, हमारे अंदर की वीकनेसेस, कौन से नेगेटिव एटीट्यूड, कौन से नेगेटिव इमोशंस, कौन से ऐसे नेगेटिव संस्कारास, उस सारी चीज को पहचानना होगा, उसका रूट कॉज कहां पर है, रियल एनिमी कौन है हमारा, ये बैरियर्स में हमें समझना होगा। आफ्टर हमारा दुश्मन कौन है। जब बाबा कहते हैं ना, हम कैसे पढ़ते हैं, अपना अनुभव बता रहे कि रावण ऐसे है ना मुरली में, तो रावण कोई ऐसे थोड़ी एक मोहल्ले में रहता है, कोई थर्ड पर्सन है वो डिस्टर्ब कर रहा, माया वहां पास में रहती है वो डिस्टर्ब करती है। हमारा उस लाइन को कैसे पढ़े, मुरली में जब आता है रावण शब्द माया, आप पढ़ करके देखना, हम ऐसा करके माना हमारा अंदर का क्रोध ही, हमारा अंदर का, फिर वो लाइन पढ़ना जरा कैसे समझ में आती है, हमारा अंदर का अहंकार, हमारा अंदर का मोह। अब ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये जो फाइव जो चीजें हैं, कोई से भी दुनिया भर की पुस्तक, धर्म पुस्तक उठा के देख लें, ये पांचों का सेम ही सीक्वेंस मिलेगा। ऐसे नहीं कि बाइबल में लिखा होगा एंगर देन ईगो देन लस्ट, नो, सेम सीक्वेंस। कभी सोचा इस चीज के बारे में, काम को बाबा कामनाओं से जोड़ते हैं, जिसके अंदर डिजायर्स अधिक काम अधिक, कितना इजी कर दिया एक ही लाइन ने। क्रोध कब आता, जब कोई चीज हम अचीव करना चाहते बीच में कोई आकर, कामना है पूरा करना चाहते, बीच में आकर के उन्होंने रोड़ा अटका दिया। हर किसी के ऊपर हम क्रोध करते नहीं घूमते हैं, यज्ञ में पूरे में देख लेना, परिवार में देख लेना, अपने वर्क प्लेस पे देख लेना, सारे कलीग्स के साथ हम गुस्सा नहीं करते, वेरी फ्यू पीपल आर देयर जिनके ऊपर हम गुस्सा करते हैं। हु आर दे वंस, जिनके साथ हमारी अटैचमेंट है, और जिनके साथ अटैचमेंट है उनके प्रति हमें लोभ भी होता है। अगर मां की अपने बच्चे के लिए है, सिस्टर के हस्बैंड है, वाइफ है, काश उनको प्रमोशन मिल जाए, काश, और जब पूर्ति हो जाएगी तो उसके लिए कितनी ईगो। लेकिन इन पांचों का भी रूट कहां पर है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का भी रूट कहां पर है, बॉडी कॉन्शियस। बैरियर्स, इस रावण को अपने अंदर के उसको, और काम करते करते लॉ ऑफ कर्मा फिलॉसफी को भी ध्यान में रखना होगा। कुछ भी कर रहे हैं उसका फल मिलना ही है। अपने आप अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी वर्क में। एक्सेप्ट द सिचुएशन, फिर जो हो गया आपने बढ़िया कर दिया इतना, देन एक्सेप्ट इट। गीता का कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है, ये हमारे अंदर घर कर जाए हर बात में कल्याण, तो किंतु परंतु सब खत्म हो जाएंगे। सेवन नंबर इज की रिजल्ट एरिया, वहां पर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी की रिजल्ट एरियाज, जिसमें मेन चेंजेस आने से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ जाती हैं, तो हमारे लिए एक सेल्फ के लिए, इनर सेल्फ, फैमिली, हेल्थ, वर्क लाइफ, ये हमारे पर्सनल लेवल पे की एरियाज हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं पूरे की हमारी वर्किंग को। इसके लिए हमें कुछ गोल्स बनाने होंगे। स्मार्ट, स्मार्ट का एक्रोनिम ऑफ फाइव वर्ड्स, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हों वो गोल्स, मेजरेबल हों, एक्शनेबल, अटेनेबल हों, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक हों और टाइम बाउंड हों। कर लेंगे नहीं, छोटा छोटा चार्ट रखने के लिए जो बाबा कहते हैं स्पेसिफिकली क्रोध मुक्त, ये हमारे बीकेस की लाइफ से रिलेटेड, और फिर मेजर भी कर सके। अच्छा आज तो दिन में 3 बार क्रोध हो गया, मेजर। और वैसे गोल्स रखे जो हम अटेन कर सकते हैं। अब सतयुगी महाराजा महारानी बनना ये तो बहुत रिमोट हो गया ना, उसके लिए हम जो छोटे छोटे बीच में 4 बजे उठना है इन दिनों, 3:30 2 बजे उठना है, ये करना है इन दिनों, ये बुक पढ़नी है, ये मुरलियों की स्टडी करनी है, सीधे ही हम ये गोल रखे हाँ सतयुगी तो कर कुछ नहीं रहे हैं, उसके लिए है ये स्मार्ट का। स्टेप 8 आ जाता है फिर, स्ट्रेटजीज उसके अकॉर्डिंगली हम बनाए। स्ट्रेटजीज हमारी अलाइंड होनी चाहिए हमारी एक्शन प्लानिंग के साथ, जो प्लान करा है फिर उसके लिए क्या टैक्टिक्स हैं, क्या चीजें अपनाई जाए। अब यहां पर आता है मेडिटेशन का रोल। जहां कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये मेडिटेशन करवाई गई तो देखा गया जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ी उनके अंदर, जॉब कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हुए, ज्यादा कंसंट्रेटेड माइंड से वो लोग फोकस्ड इंटेलेक्ट से काम कर सके, और उसका सीधा इफेक्ट आउटपुट पे नजर आया। लंबी लंबी जो मीटिंग्स चलती थी जो कि ईगो क्लैश के कारण, मीटिंग्स का टाइम कम हुआ, ये ऐसे बहुत से टीम वर्क स्ट्रेंथन हुआ, कॉपरेशन बढ़ी, ये मेडिटेशन के डायरेक्ट इफेक्ट्स। 4 स्टेप्स में हम लोग मेडिटेशन समझाते हैं, आप सबको तो क्लियर ही है, इनिशिएशन, कंटेम्पलेशन, कंसंट्रेशन एंड अब्सॉर्प्शन। कैसे बैठना है विद हाफ ओपन हाफ विद बैक इरेक्ट, इनिशियल स्टेज आती है। कंटेम्पलेट करते हैं आत्मा हो, मस्तक पे ध्यान लेकर के जाते हैं, चमकता हुआ सितारा नजर आने लगता है, विजन क्लियर बनता है। कंसंट्रेट फोकस करते हैं उस पावर हाउस से, एनर्जी किरणों की बरसात होने लगी, फिर तो अब्सॉर्प्शन, फिर तो खाली जस्ट इंजॉय, कीप इंजॉइंग दैट स्टेट ऑफ माइंड। दीज आर द 4 स्टेजेस एंड लास्ट में आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए क्या करना है, मॉनिटरिंग, रेगुलर फीडबैक मिलती रहे, क्या कर रहे हैं, कितने अचीव कर लिए, कितने अभी रहता है काम, कितना हो गया, दिस इज मॉनिटरिंग। टाइमिंग, किस टाइम हम पीक पे हैं उसका भी पहले से विजुलाइज, कब हमें हार हो सकती है, कौन सा हमारे लिए ये पीरियड है वो चैलेंजिंग आ सकता है, उस टाइम पीरियड को भी पहले से विजुलाइज कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके साथ मिलकर के चलने के साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देख सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये करेंगे ना, आई एम अकाउंटेबल टू माई वर्क। यहां पे जितनी जितनी हमारी कर्मा फिलॉसफी हमें क्लियर होती जाती है, ऑटोमेटिकली हम समझने लगते हैं कि वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ आई एम रिस्पॉन्सिबल। एंड नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, नॉन वायलेंट, कभी अनपीस वगैरह की देखी है मीटिंग्स, वो सदन में कैसे वार्तालाप होते हमारे लीडर्स, टीवी पे सारा नेशन उनको देख रहा होता, कोई चेयर दूसरे पे फेंक रहा, कोई पुलिस आ रही है, स्थगित कर दिया गया सेशन, आता ना? नो, यहाँ पे क्या कहा है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, फिर दूसरे की साइलेंस को भी समझ सके। तो ये पूरे को बहुत लंबा लेंथी चैप्टर, उसको सारे को समाप्त करने की कोशिश करी है। तो दो मिनट अभी बाबा की याद में बैठेंगे। हाँ, तो आप सबसे छुट्टी भी हाँ लेते, घड़ी इशारा कर रही है 11 बज के। हाँ, सो आप सबके लिए मंगल कामना, बहुत अच्छे एमएससी में आपके मार्क्स आए इस एग्जाम में, और या आई एम लीविंग टुडे, और ये तो छोटा सा एग्जाम, उस टीचर के हाथ में हाथ रहे तो क्या कहा, जिंदगी के भी हर एग्जाम में पास विद ऑनर होते रहे, सीमा बहन के दिल की इच्छा, और उससे अति समीपता का अनुभव कर सके। तो बहुत एंजॉय किया हमने आप सबकी कंपनी।
सबके